चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आप लोग थक तो नहीं गए? तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना एहसास में। तो इंसान जितना खुद को थकाता है, खपाता है, उतना ही वो निखरता है। जितनी पॉलिश इंसान की थकने और खपने के बाद होती है, वो कंफर्ट जोन में रहकर नहीं होती। जी तो आगे बढ़ते हैं, जो आज की हमारी डिस्कशन का थर्ड और लास्ट पॉइंट है। मैं सोच रही थी अल्लाह पर वलिल्लाहिल्हम्द कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को कैसे थामते हैं। पहला पॉइंट मैंने और आपने पढ़ा कि हर मर्ज का इलाज है। अब कितने अजहान में ये सवाल आया होगा कि कैसे, डॉक्टर्स तो जवाब दे देते हैं, और कहाँ इलाज मौजूद है भाई। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको बता दिया कि कुरान में, कुरान पूरी की पूरी शिफा की किताब है। अब बहुत से अजहान में ये सवाल पैदा होगा कि मैंने तो कितनी ही दफ़ा कुरान के थ्रू ट्रीटमेंट किया, कितनी ही दफ़ा सूरह फातिहा का दम किया, लेकिन मैं तो ठीक नहीं हुई। ये सवाल जहन में आया होगा ना, तो आए इसका जवाब देखते हैं कि कुरानी दम बेअसर क्यों। तो यहाँ ये बात समझ लेना ज़रूरी है कि जो अस्कार, आयात, दुआएं पढ़ी जाती हैं और जिनसे शिफा मतलूब होती है, यकीनन नाफी और शिफा बख्श होती हैं, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि उसमें कबूलियत की सलाहियत हो और फाइल और आमिल की कुव्वत और हिम्मत और उसकी तासीर भी कबूलियत महल के मुक्तज़ी हो। फाइल से मुराद क्या है कि दम करने वाला, और आमिल से मुराद क्या है, अमल करने वाला। तो पहली चीज़ क्या है कि लेने और देने वाले को यकीन हो। जब तुम देखो कि अज़कार, आयात और दुआओं में शिफा नहीं है, तो समझ लेना चाहिए कि पढ़ने और दुआ करने वाले की तासीर और तवज्जो कमज़ोर है, या असर कबूल करने वाले में कबूल तासीर की सलाहियत नहीं है। ठीक है, तो पहली हर्डल क्या होती है, क्या जो दे रहा है या उसमें अमल की कमी है, तवज्जो की कमी है, या यकीन की कमी है। इसी तरह जो ले रहा है उसका यकीन कमज़ोर है, सही, या फिर कोई और ऐसी शदीद और सख्त रुकावट मौजूद है जो दवा की तहसीर को रोक रही है। जिस तरह के अमूमन ज़ाहरी और हिस्सी अमराज में दुआओं का हाल होता है। और फिर देखें, जब हम मेडिसिंस लेते हैं तो बाज़ दफ़ा इसलिए भी वो हम पे असरअंदाज नहीं होती कि दरमियान में कोई स्ट्रॉन्ग हर्डल आ जाती है। जब तबीयत किसी दवा को कामिल तौर पे कबूल कर लेती है, तो जिस दर्जा तबीयत दवा को कबूल करेगी, उसी दर्जा बदन और जिस्म को नफ़ा पहुँचेगा। इसी तरह जब आदमी का कल्ब किसी दुआ तावीज़ को कबूल कर लेता है और दुआ पढ़ने वाले के अंदर अज़ाला मर्ज के लिए नफ्स फ़आला और हिम्मत मुअस्सरा होती है, तो ये दुआ मकरूह और नागवार अमर की मुदाफ़ियत और हुसूल मतलूब मकसूद का एक कवी तरीन सबब बन जाता है। लेकिन बसा औक़ात दुआ और मंत्र की तासीर इसलिए नहीं होती कि किसी ऐसी चीज़ की दुआ की जाती है जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, और इसमें किसी पर जुल्म हो रहा है, या इसलिए असर नहीं होता कि दुआ के वक्त कल्ब पूरी तरह अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे नहीं होता। पहली रीज़न क्या थी कि यकीन की कमी होती है। अब दूसरी और तीसरी रीज़न क्या है कि बाज़ दफ़ा कोई ऐसी दुआ की जाती है कि जो अल्लाह ताला को नहीं पसंद, और अल्लाह ताला तो किसी बंदे पर जुल्म नहीं करना चाहता, लेकिन उस दुआ के ज़रिए बंदा खुद पर जुल्म कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे बाज़ दफ़ा कितनी छोटी डिजीज़ होती है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के दाढ़ में दर्द होता है, वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर क्या बताते हैं कि इसको कैंसर है, देख लीजिए। तो बाज़ दफ़ा इंसान छोटी छोटी बीमारियों का इलाज जब करता है, तो वो ठीक नहीं हो रही होती और उसके ज़रिए फिर इंसान को पता चलता है कि अंदर तो एक बड़ी बीमारी है। तो इस तरह बाज़ दफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी बड़ी बीमारियों को एक्सपोज करने के लिए बंदे को छोटी छोटी बीमारियों में मुब्तला करते हैं और बंदा जब उनका ट्रीटमेंट करता है तो वो सेहतयाब नहीं होता। सही। और फिर इसी तरह भी दुआ बाज़ औक़ात असर नहीं करती कि दुआ के वक्त कल्ब पूरी तरह अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं होता। अल्लाहु अकबर। देखिए, कल्ब का मुतवज्जे होना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत अफसोस के साथ कह रही हूँ कि हम कितने वज़ाइफ ऐसे करते हैं, कितने आमिल बताते हैं कि लाख दफ़ा ये तस्बीह करो और कितने करोड़ दफ़ा ये तस्बीह करो, और हम करते भी हैं, है ना, करते हैं ना, लेकिन कोई असर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कल्ब पूरी तरह मुतवज्जे ही नहीं था, पता ही नहीं है क्या पढ़ रहे हैं। ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक इन्नी कुंतु मिनल ज़ालिमीन का वसीफ़ा बताया जाता है, सूरह इखलास का वसीफ़ा बताया जाता है कि 1 करोड़ बार पढ़ें, 1,000 बार पढ़ें। भाई, 1 करोड़ और 1,000 बार पढ़ने से कल्ब किस तरह मुतवज्जे हो सकता है? ये इंसान की फितरत के ख़िलाफ़ है। तभी तो फिर दम दरूद असर नहीं करते ना। तो इसलिए जो भी चीज़ पढ़ें उसकी क्वांटिटी थोड़ी रखें, क्वालिटी अच्छी रखें, क्वालिटी पे फोकस कीजिए। सहाबा कराम का जो अभी मैंने आपको वाकया पढ़ के सुनाया, क्या पूरा दिन बैठ के वो सूरह फातिहा पढ़ते रहे? नहीं, थोड़ी देर पढ़ी। तो मेरे प्यारे साथियों, कहीं भी रसूलुल्लाह ने लंबी दुआएं नहीं की। आप किसी एक जगह से मुझे बता दें कि रसूलुल्लाह ने 300 बार कुछ पढ़ा, 1,000 बार कुछ पढ़ा, नहीं। और जो एक सबसे छोटी तस्बीह सुभानअल्लाह बिहम्दी, उसको आपने 100 बार पढ़ाए, इस तस्बीह को सिर्फ, और इस्तग़फ़ार को 100 बार, और बाज़ रिवायात में तो 70 का अदद आता है। इसके अलावा कोई भी तस्बीह ऐसी नहीं है जिसको आपने कसरत से पढ़ा हो, यानी एक लंबी क्वांटिटी में पढ़ा हो। क्यों? क्योंकि कल्ब ही फिर मुतवज्जे नहीं होता, ध्यान ही बट जाता है, तो फिर वो कहाँ से दुआ असर करेगी, वो कहाँ से दुआ कबूल होगी। तो थोड़ा पढ़ें, अच्छा पढ़ें, उसके तर्जुमे को माइंड में रखें और दिल पूरी तरह उसकी तरफ माइल करते हुए पढ़ें, तो तभी वो दुआ कबूल होगी और असर करेगी। फिर इसी तरह दुआ को रोकने में जो एक और चीज़ आती है, वो हराम गज़ा खाई जाती है, या किसी पर जुल्म किया जा रहा है, या दिलों पर गुनाहों का मैल चढ़ा हुआ है और कुलूब पर गफलत, सहव या लहू लब की तारीकियाँ छाई होती हैं। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनन तिर्मिज़ी में हमें ये रिवायत मिलती है कि तुम बारगाहे इलाही में इस तरह दुआ करो कि तुम्हारे अंदर कबूलियत दुआ का पूरा पूरा यकीन हो। खूब समझ लो कि गाफिल और बेखबर कल्ब की दुआ अल्लाह ताला कबूल नहीं करते। पहली चीज़ क्या है? पूरा यकीन। और दूसरी चीज़ क्या है कि गाफिल और बेखबर कल्ब की दुआ तो कबूल ही नहीं होती। तो फिर ये जो इतने लंबे लंबे मेयर वसीफे आप करते हैं ना, हदीस से साफ पता चलता है कि रिजेक्टेड, कोई काबिल कबूल का दर्जा उन्हें नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि गाफिल दिल के साथ हम करते हैं, बेखबर दिल के साथ हम करते हैं। और फिर इसी तरह जहाँ हमने अभी तय्यब खाने का पढ़ा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम में ये रिवायत मिलती है कि लोगों, अल्लाह ताला पाक है और वो पाक चीज़ ही को कबूल करता है, और अल्लाह ताला ईमान वालों को उसी चीज़ का हुक्म देता है जिसका हुक्म उसने अंबियाए कराम को दिया है। उसके सबूत में आपने ये एक आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी वो पाकीज़ा खाने के बारे में थी। और फिर सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि इसके बाद रसूलुल्लाह ने ऐसे आदमी का जिक्र फरमाया जो एक तवील सफ़र करता है और दुआ करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी तवील सफ़र करता है, खस्ता हाल और गर्द व गुबार से अटा हुआ है, आसमान की तरफ हाथ उठाकर अल्लाह से यूं मांगता है, ऐ परवरदिगार, ऐ परवरदिगार, और हाल ये है कि उसकी ग़िज़ा हराम, उसका पीना हराम, उसके कपड़े हराम। तो अब खुद ही सोच लें कि उसकी दुआ किस तरह कबूल होगी। तो जब कभी दुआ कबूल ना हो تو غور کریں کیا میرا کھانا تو حرام نہیں؟ کیا جس طریقے سے پیسے آتے ہیں وہ حرام کی تو نہیں؟ اور کھانا حرام غور کیجیے، کتنی جنک فوڈز ایسے ہیں کہ جن میں حرام کا کوئی نہ کوئی انگریڈینٹ موجود ہوتا ہے، تو ایسے تمام کھانوں سے بچیں پلیز۔ غور کریں، جب بھی کوئی چیز کھانے لگیں تو دیکھیں اس کے پروڈکٹس کو، انگریڈینٹس پر غور کیجیے کہ کیا کیا اس میں ملا ہے، کوئی حرام کی چیز تو نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح ابو ذر فرماتے ہیں کہ یکفی من الدعاء مع البر ما یکفی الطعام من الملح، تھوڑی دعا بھی نیکی کے ساتھ اسی طرح کافی وافی ہو جاتی ہے جس طرح تھوڑا سا نمک کھانے کے لیے کافی وافی ہو جاتا ہے۔ کیا مراد ہے اسے؟ ابھی ٹائم ختم ہوا جا رہا ہے، انشاءاللہ جو ہماری نیکسٹ ٹاک ہوگی ہم ادھر سے سٹارٹ کریں گے، لیکن آج کا جو خلاصۃ القول یہ ہے کہ کبھی دعا کو ملامت نہ کریں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، میری تو کبھی بھی دعا قبول نہیں ہوئی۔ بھائی، قبول نہ ہونے کی وجہ ڈھونڈیں، کیا ریزن ہے؟ کہیں میرا یقین تو کم نہیں؟ کہیں جب میں دعا کرتی ہوں تو رٹے رٹائے جملے تو نہیں بولتی؟ کیا میں نے کسی پر ظلم تو نہیں کیا رکھا؟ قطع رحمی ظلم ہے نا، کسی سے ناراض تو نہیں ہوں؟ کیونکہ جو لوگ ناراض ہوتے ہیں ان کی دعائیں لٹکی رہتی ہیں جب تک وہ راضی نہ ہو۔ پھر اسی طرح کیا میرا کھانا پینا اوڑھنا لباس یہ سب حرام کی تو نہیں ہے؟ اور بالخصوص میرا کھانا، کیا میں پاکیزہ کھانا کھاتی ہوں؟ تو آج آپ نے ان تمام پہلوؤں پر غور کرنے ہیں۔ انشاءاللہ یہ جو آخر میں ابو ذر کا جو قول ہے میں نے پڑھا، اس کو ہم نیکسٹ ٹاپک میں انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے، اگر زندگی نے وفا کی اور اللہ رب العزت نے توفیق بخشی۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔